रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सर्दियों का मौसम हमारे मोमिनीन के लिए बहार की मानिंद होता है, क्योंकि वो उसके मुख्तसर दिनों में रोज़ा रखते हैं और उसकी लंबी रातों में इबादत करते हैं। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में।
मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ हसन, आपकी
वालेकुम
खिदमत में और
अस्सलाम।
अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। एक खूबसूरत सी जो ठंडी सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ तेहरान स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैर से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक गर्मा गर्म सा प्रोग्राम हम आप लोगों की खिदमत में लेके आए हैं।
ठंडी जो आपने ठंडक होने की जो बात की
जी
उसी पे ये मैं 2-3 दिन पहले ये हदीस मैं देख रहा था
जी
कि जो शुरू प्रोग्राम में
बिल्कुल
मैंने पढ़ी कि रसूल हम लोगों के जहन में ये रहता है कि जो है हम लोग जो है बहुत ही कह सकते हैं कि अपनी तेज़ी दिखा रहे हैं और
ठीक
ये
है
इसमें सवाब कम है और ये चीज़ है
जी
इन सारी चीज़ों में कि भाई
रोजे
दिन छोटे हो गए हैं, जल्दी जल्दी सारे अगर खुदा ना खासा कज़ा रोज़े हैं तो वो रख लो वरना बहरहाल
ठीक
रोज़े रख लो।
सही
लेकिन होता ये है कि खुदा खुदा ने एक सहूलत हम लोग के लिए
सहूलत
फराहम
बनाई,
की है
बिल्कुल
तो
बेशक
हम लोगों को भरपूर तरीके से उसका इस्तेफादा करना चाहिए। और उम्मीद है कि बहरहाल हम तो रोज़ा नहीं रख पाए, हम आले में बेअमल हो गए, तो बहरहाल लेकिन आप लोग हम लोगों के लिए दुआ करिएगा खुदा अगर रोज़े से हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा हम आपको बताते चलें बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हमने आपके लिए आज तैयार की हैं। चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या चीज़ देखेंगे अभी, यानी आप चलिए देखिए कैसे हमसे रابطہ कर सकते हैं। जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। जो मज़ेदार सी चीज़ें हमने आपके लिए तैयार की हैं वो एक तो एक गलत बात है, खुर्रम बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं
जी
और फिर लोग उसी के ऊपर भरोसा करने लगते हैं।
ठीक है
मुख्तलिफ़ खबरें आती हैं, एक तो मिसाल के तौर पर खबर आई थी, कई साल पुरानी है, शायद
जी
कई साल से चल रही हो और अभी तक बाज़ लोगों को यकीन है उस पर कि अगर आप मिसाल के तौर पर ATM मशीन पर जाएं और खुदा न खासा कोई आके ज़बरदस्ती आपसे वो करना चाहे, पैसा लेना
जी
चाहे, तो अगर आप उल्टा
नंबर
पासवर्ड जो
लगा
होगा
से
वो
ठीक
नंबर डाल देंगे तो पुलिस आ
पुलिस
जाएगी,
अच्छा
ये ज़्यादातर फिक्र
ठीक
है उसमें। हालांकि ये
है
अभी थोड़े दिन के, अब तो कई महीने हो गए मुझे पढ़े हुए, किसी ने मेरे लिए भेजा, मैंने जाके इसके बारे में तहकीक की, ऐसे ही मैं
सही
नहीं माना। जब पता चला तो देखा कि नहीं, वो बिल्कुल गलत चीज़ है और उसमें एक बार कहीं स्वीडन में तहकीक हो रही थी इस पर लेकिन
अच्छा
मुकम्मल नहीं हुई। तो
सही
इसी किस्म की एक और चीज़ आजकल मशहूर हुई है, उसके बारे में हम बताएंगे, यकीनन
सही
नाज़रीन आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन पहले चलते हैं हम लोग एक दास्तान देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी है, मेरा एनिमेशन है और हज़रत बहलूल और शेख बगदाद आज उसका उनवान है।
सही
तो चलते हैं, अगर तैयार हो आप लोग चलते हैं,
बिल्कुल
वो देखते हैं, उसके बाद मेहमान आएंगी और मेहमान के बारे में आप बता
जी।
दीजिए जल्दी।
मेहमान जो है हमारी डॉक्टर रिजवाना हुसैन, हमारे साथ इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी चंद ही लम्हात में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गज़ाइत के मौजू के ऊपर वो बात करती हैं, तो आज भी एक बड़ा अहम मौजू वो लेके आई हैं और उस पर बात होगी। साथ साथ मैं भी ये बताते चलूँ कि हफ्ते का मौजू, जैसे कि आप लोगों को पता है, कैसे जो है एक नई शुरुआत की जाए, एक अच्छी शुरुआत की जाए, इसके बारे में जो है इंशाल्लाह आप लोग भी बात करें, हम लोग भी बात करेंगे। और जैसे कि कल भी जो है हमने इस मौजू पर बात की थी कि कैसे एक नया जो दिन है उसको मुस्कुराहट के साथ शुरू किया जाए। बहरहाल मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूंगा, तो चलते हैं दास्तान देखते हैं जी। चलें जी दास्तान देखते हैं।
जी नाज़रीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और बहरहाल आपने मुख्तसर सी एनिमेशन आपने देखी और यकीनन आपको पसंद आई होगी। इस तरह की दास्तानें बहुत हम लोगों की छोटी सी दास्तानें होती हैं लेकिन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन से यही होता है कि दास्तानों के ज़रिए बताया जाता है और ये आदत जब पड़ जाती है तो अच्छी आदत है कि फिर आप काम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें दास्तानों के ही ज़रिए सीखते हैं और आपके अंदर जो सलाहियत है वो सामने आ जाती है इन चीज़ों के ज़रिए। एक जो है मैसेज जो है नादिया बतूल आबदी साहिबा ने भी हम लोग के लिए भेजा है, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबी मैसेज है। और ये कि आप हमारा प्रोग्राम बराह रास्त, अगर आपके यहाँ चैनल हम लोगों का नहीं आ रहा, मैं अपने साथियों से फिर से उनको यानी बताऊंगा कि आप चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आने में मुख्तलिफ जगहों पर, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आप तब तक हम लोगों के वेबसाइट पर बराह रास्त हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, यानी urdu.sehertv.ir/live पर जाके आप कंप्यूटर के ज़रिए अपने देख सकती हैं। और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम यूट्यूब, फेसबुक पर भी मौजूद हैं, और इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पर हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स भी देख सकती हैं और तमाम नाज़रीन देख सकते हैं। तो चलते हैं खुर्रम के पास, हम लोगों के मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगाज़ करते हैं।
बहुत शुक्रिया हसन, आपने जो है हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की कि वो कैसे जो है अगर उनकी सेटेलाइट में प्रॉब्लम है तो प्रोग्राम देख सकते हैं। बाहर हमारे साथ डॉक्टर रिजवाना हुसैन स्टूडियो में मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि गज़ाइत के मौजू पर हमारा गुफ्तगू रहेगी, और मौजू आज जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया है वो एक बहुत अहम मौजू है, एक ऐसा मसला है जो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, और उसको कंट्रोल करना अभी से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन जो है बीमारियों से बचना बहुत बेहतर है इससे कि आप बीमारियों को ट्रीट करें, बीमारियों का इलाज करें, उसमें खर्चा भी ज़्यादा है और बहुत मुश्किल क्रम के मुश्किल जो है पेश आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ने मौजू जो हमें बताया वो ये है कि बच्चों में छोटी एजेस में स्कूल की एज में जो मोटापा बढ़ रहा है उसके बारे में डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हमारे से बात करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब आपके।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया, और कैसे हैं आप? ठंड जो है तहरान की वो आपको कैसा फील कर रही हैं आप उसके साथ?
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, बस थोड़ा सा पोल्यूशन जो है वो
बिल्कुल नहीं, ये पोल्यूशन जो है ये एक हिस्सा है तहरान का, इसको आप अलहदा नहीं कर सकते। बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बड़ा अहम मौजू आप जो है लेके आई हैं, और खास तौर पे इस टाइम पे माएँ जो हमारी माएँ बहनें जो बैठी हुई होंगी टीवी के सामने उनके लिए बड़ा अहम है, बच्चों में मोटापा क्या वजूहत हैं, क्यों बढ़ रहा है?
शुक्रिया खुर्रम, पहले इसलिए कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। असल में वजह ये है कि ये बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक मोटापा नहीं है। जैसे मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मोटापा एक कैफियत का नाम नहीं है, ये एक दावत है बहुत सी बीमारियों
की।
अब बच्चों में मोटापे की वजह सबसे पहले हमारा रहन सहन में फ़र्क है,
लाइफस्टाइल
बिल्कुल हमारा बदलता जा रहा है, दूसरा फास्ट फूड की तरफ रुझान ज़्यादा होता जा रहा है। अगर आप देखा जाए कि ये किसी तरक्की पजीर मुल्क में ये किस जगह पे ज़्यादा है तो वो बड़े शहरों में,
ठीक है,
ठीक है। अब बड़े शहरों में जहाँ पे बढ़ती हुई आबादी है, हर बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनसे लोग ये सोचते हैं और ये सोच के निकलते हैं कि वो शहर में ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं।
सही।
अब शहर में इस वजह से बड़े शहरों में आप देखें आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे आबादी बढ़ती जा रही है खाने पीने की फास्ट फूड की जगह ज्यादा है, और दूसरी बात है कि खेल के मैदान कम होते जा रहे हैं,
वर्जिश करने की जगह कम होती जा रही है,
तो
गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा होता जा रहा है,
फास्ट फूड ज्यादा है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखें अच्छे स्कूल में होमवर्क भी ज्यादा मिलता है,
ठीक है,
देखिये जितने स्कूल है अब बच्चे स्कूल जाते हैं वापस आके उनका होमवर्क है,
ठीक है,
उसके बाद खेलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है,
ना टाइम है ना जगह,
तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वीडियो गेम और टीवी, ये दो एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए रह जाती है और बच्चे इसी पे अपना टाइम गुजारते हैं। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, इवन अगर आप घर में भी सही खाना खाएं और बच्चों को बगैर सोचे समझे आप खाना दें, तला हुआ ज्यादा खाना दें, सादी गजा का इस्तेमाल कम करें, तो उसमें मोटापा
हो सकता है। जैसे कुछ माएँ जो हैं वो जब भी बच्चों को भूख लगी तो वो चिप्स जो है वो तल के वो पकड़ा दिए भाई, जब भी भूख लगी, वजह इसके कि कोई जो अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, फास्ट फूड का बहुत नाम लिया जाता है, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई फास्ट फूड भी तो वही चिकन उसमें भी है जो हम घर में भी चिकन खा रहे हैं, तो क्या है, क्या चीज़ जिसकी वजह से इसकी कैलोरी जो इतनी ज़्यादा हो जाती है और मोटापा, मिसल आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं इसमें?
देखिए जैसे फास्ट फूड जब एक सर्व किया जाता है वो एक बहुत बड़े पोर्शन में किया जाता है,
ठीक है,
उसमें पहले ब्रेड भी है,
ठीक है,
लेट्स आप बर्गर ले लें, उसमें फिर चीज भी है,
बिल्कुल चीज खुद जो
तला हुआ चिकन भी है,
ठीक है,
ठीक है,
ये खुद तलना जो ऑयल का आ जाना ये बड़ा,
और मैं ऑयल के हवाले से भी आपको बताती हूँ, फिर उसके साथ आप सैलेड की सर्विंग देखें, आप चिप्स देखें, तो वो एक पोर्शन में बहुत ज्यादा
मेयोनीज वगैरह जो आ गई वो
सब कुछ जो है वो मिलके एक एक टाइम पे बहुत ज्यादा कैलोरीज हम बच्चे को दे रहे
हैं,
कहीं पे भी किसी फास्ट फूड में भी सर्विंग में नंबर ऑफ कैलोरीज जो है वो बहुत ज्यादा होती
है, ठीक है।
अब जहां तक दूसरी बात आ गई, जो बहुत अच्छे फास्ट फूड है उसमें तो गजाइयत का ख्याल रखा जाता है, ऑयल डेली बेसिस पे या कुछ सर्विंग के बाद चेंज किया जाता है, जबकि आम जो फास्ट फूड है उसमें तेल चेंज ये ऑयल चेंज नहीं किया
जाता। डॉक्टर साहब कभी बार तो ये भी कहा जाता है कि गाड़ी का तेल जो है वो भी मिक्स किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया है।
नहीं ऐसी बात नहीं है, वो गाड़ी के तेल के बराबर आ जाता है,
बिल्कुल जितना वो काला हो जाता है, बिल्कुल सही है।
तो उसमें ये होता है कि फिर जब आप वो खाते हैं, आप उसमें तला हुआ चिकन या कोई चीज भी या चिप्स आप खाते हैं, तो वो इतनी जल्दी हजम नहीं होता।
सही है। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक बात अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपके जो है इत्तला के लिए है कि आप जब तेल में एक बार एक चीज़ को तलते हैं तो उसके बाद आप उस तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार अगर आप तेल फ्राइंग ऑयल, ख़ास जो फ्राइंग ऑयल होता है उसको ख़रीदें, जो बहरहाल मैंने कम ही देखा है कि हमारे इलाकों में मिलता है, अगर ख़ास तौर पे जो फ्राइंग के लिए तेल है, एक होता है तेल जो खाना पकाने के लिए होता है, एक होता है फ्राइंग के लिए, अगर फ्राइंग वाला इस्तेमाल करें तो उसको आप तीन चार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तीन चार बार उसके बाद जो उसको फेंकना होता है। तो मैंने कही ये बता दूं एक बात,
जी बिल्कुल अच्छी खबर थी और बहुत अच्छी खबर है कि बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता,
बिल्कुल किया नहीं जाता,
ठीक है, आपको पता है कि ऐसा किया नहीं जाता। फिर दूसरी बात ये कि एक वक्त था कि नाश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी,
सही,
एक स्कूल जाते हुए बच्चे के लिए नाश्ता एक माँ के लिए बहुत बड़ा,
बिल्कुल वो गेट तक आ जाती थी माँ के, वो आखिरी लुक में हो उसके बच्चे के मुंह में जाए,
बिल्कुल। लेकिन आजकल बिल्कुल उससे ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल मुख्तलिफ है, बच्चे नाश्ता नहीं करते, बच्चों को पॉकेट मनी की बहुत ज्यादा आदत हो चुकी है, बच्चे पैसे लेके जाते हैं। और फिर एक और जो स्कूल के अंदर इशू आ जाता है, स्कूल की कैंटीन,
ठीक है,
ठीक है, पढ़ाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन स्कूल की कैंटीन में ऐसे जूसेस, ऐसा फूड जो है वो बेचा जाता है जो बच्चों के लिए देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन गजाइत के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये कलरफुल जूसेस जो सिर्फ एक मीठा पानी है,
चीनी डाली हुई, रंग डाला
और एसेंस है बस, और बच्चे जो है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बच्चे नाश्ता नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी, एक अच्छा दिन गुजारने के लिए, एक हेल्दी दिन गुजारने के लिए नाश्ते की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है,
ठीक है।
जब वो नाश्ता नहीं करते तो वो कैंटीन से लेके कुछ भी खा लेते हैं,
बिल्कुल,
और फिर उसके बाद वो क्लास में आके बैठ जाते हैं,
ठीक है।
फिर घर आके बच्चे खाना नहीं खाते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्कूल कैंटीन से खाया हुआ होता है, और फिर शाम को जब भूख लगती है फिर वही चिप्स, वही फ्राइड, क्योंकि माए एक वो वक्त आ जाता है कि माए कोशिश करती है कि बच्चा कुछ भी खा ले,
हाँ बस कुछ खाए पेट में कुछ चला जाए, बिल्कुल।
तो फिर ऐसे हालात में माए इस हद तक भी आ जाती है कि चिप्स चिकन घर में भी फ्राई करके,
बिल्कुल सही
कहा, क्योंकि वजह ये है कि अगर बच्चा नाश्ता करके जाए, और देखिए लंच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ड्राई फ्रूट है, ऑलिव्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं, बॉयल्ड अंडा है, खजूरें हैं, हेल्दी चीजें आप दे सकते हैं, ना कि आजकल ये जो रेडीमेड फूड है इसका ट्रेंड ज्यादा होता
है और ये सारी चीजें, बिल्कुल सही। अच्छा बता डॉक्टर साहब, हमारे जमाने में तो वही फ्राई अंडा होता था, उसको कभी बॉइल कर दिया जाता था, कभी ऑमलेट हो जाता था। डॉक्टर साहब यहाँ पर ये इस मौजू पे भी अगर हो सके तो आप बात करें कि बच्चों में नाश्ता ना करने की जो वजूहत है, इसको अलहदा जो है उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या माएँ ढीली हो गई हैं कि वो नाश्ता नहीं पहुँचा पा रही बच्चों के, या बच्चे बिल्कुल वो हो गए हैं?
देखिए दोनों वजह हैं, अच्छा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माओं का भी बहुत सी, आजकल अगर आप देखें बड़े शहरों में बहुत सी माएँ जॉब करती हैं,
सही, बिल्कुल।
उन्होंने भी अपने ऑफिस में, अपनी जगहों पे, अपनी जॉब की जगह पे पहुंचना होता है, और बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है। एक वक्त था कि नाश्ता सिर्फ इसको समझा जाता था कि आप पराठा, अंडा और आप साथ दूध, चाय,
जो भी साथ,
लेकिन अब क्योंकि बच्चे भी रहन सहन बदल गया, ट्रेंड्स बदल गए, बच्चों का भी मूड चेंज, आबो हवा चेंज,
देखते हैं चीजें मुख्तलिफ, तो वो उनका जी चाहता है।
मीडिया है, मीडिया पे हर तरह की एडवर्टाइजमेंट है, हर तरह के फूड की, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ अंडे पराठे से हटके, ब्रेड से हटके, अब फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, जूसेस है, कुछ सीरियल्स है, कुछ भी, लेकिन खाली पेट
नहीं
वो बच्चा ना स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है जो खाली पेट जाए,
ठीक
है। और फिर ये बहुत सी अमराज हैं आंतों की।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बात को आगे जाएंगे, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा मौजू से हट के सवाल पूछा, लेकिन क्योंकि आप खुद भी माँ हैं तो मैंने कहा आपकी तरफ से बात सुनेंगी माएं तो उन पर ज्यादा असर होगा। चलते हैं हसन के पास। जी
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, ऐसे बात कर रहे थे कि पहले ये होता था, जैसे मतलब 50 साल पहले की बात वो कर रहे हैं,
यही होता था मुझे जहाँ तक याद आता है कि अलबत्त पराठा वगैरह होता था, लेकिन ये कि ज़्यादातर क्योंकि टाइम कम होता था तो या वो एक फ्राई अंडा, या मेरी वालदा जो है वो तो उनको शौकीन थी कि वो हाफ बॉयल अंडा जो है वो उनको खिलाने का बहुत शौक था मुझे।
आप लग नहीं रहे, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं हम। बहरहाल नाज़रीन, हम लोगों का प्रोग्राम जारी रहेगा, चलते हैं एक आप तराना मुलायजा फरमाइए, उसके अशआर हाफिज़ शिराज़ी के, और उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा। जी नाज़रीन, फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और हम लोगों की गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, चलते हैं फौरन खुर्रम के पास।
जी बहुत शुक्रिया
भाई, ज़्यादा वक्त भी नहीं।
जी बिल्कुल, मैं जल्दी से जो है डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि असरात जो हैं इस मोटापे के क्या हो रहे हैं।
सबसे पहले तो इमोशनल और साइकोलॉजिकल है।
अच्छा,
अब आप आम सी लाइफ में देख रहे हैं कि जो बंदा, बच्चों में भी आप देख रहे हैं, जो मोटा होता है बाकी सारे बच्चे उसको
तंग करते हैं।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और वो बच्चा फिर वो अपनी सीट से भी नहीं उठता।
सही है, बिल्कुल ठीक है।
स्कूल में तो दिस इज वेरी कॉमन कि बच्चे तंग करते हैं, ठीक है, और वो बच्चे फिर इस तरह से कमतरी का शिकार होते हैं, ठीक है, वो फिर इस तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकते दूसरों से जैसे आम बच्चे करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही स्कूल्स पे कम हो गई है, क्योंकि एक वक्त था कि स्कूल्स के लिए बहुत बड़े मैदान और ये सब कुछ बहुत जरूरी था, अब छोटे छोटे घरों में स्कूल्स
है, घर में जो है स्कूल बना लिए थे,
बिल्कुल वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी रूम्स हैं जिसमें भी आपने बैठ के खेलना है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
तो इस वजह से इमोशनल और साइकोलॉजिकल नफसियाती और जज्बाती मसले इनमें ज्यादा होते जा रहे हैं। दूसरा डायबिटीज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दिल के अमराज हैं,
सही
है, इनमें बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फिर कैंसर है,
सही,
और सबसे इन सब चीजों में से जो बच्चे की पर्सनैलिटी को खराब करता है वो एहसास से कम तरीके
एहसास से कम तरीके, बिल्कुल वो हर चीज से भी उसको पीछे कर देगा,
हर चीज में, वो हर खेल के मैदान
पढ़ाई में, जिंदगी
के पढ़ाई में,
खुद खाने के ऊपर, क्योंकि मूड डिसऑर्डर जो है वो खाने पे भी जैसे कि बहुत गहरा असर करता है। डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन की तरफ आते हैं जल्दी से कि क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए।
देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप घर से शुरू करें, माओ को एजुकेटेड करना चाहिए कि बच्चों को घर से नाश्ता करा के भेजें, हेल्दी बिल्कुल गजाइयत से भरपूर लंच दें, ठीक है, और बच्चों को घर के खाने पे
मधु करें,
बिल्कुल, अगर आप बच्चे फ्राइड फूड भी खाते हैं घर का खाना फिर भी बहुत बेहतर है
बाहर के खाने
से बहुत बेहतर,
ठीक है,
ठीक है। फिर दूसरा जो है, आप घर से अगर बाहर निकलते हैं तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं, ज्यादा टाइम कहाँ गुजारते हैं, स्कूल में,
ठीक है,
स्कूल में, स्कूल की कैंटीन बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, आपको देखना चाहिए कि वहाँ क्या बिक रहा है, बच्चे क्या लेके खा रहे हैं, ठीक है, ये स्कूल के प्रिंसिपल हेड को या फिर एक हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर्स होने चाहिए कि जो गजाइत में बहुत कम हो, ऐसे जूसेस और गजाइत के लिहाज से आप नुकसानदेह जूसेस और फूड बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए।
जी,
और इसके बाद जो है आप ये कह लें कि ये मोटापा आप पैदा होने के बाद ही कैसे कम कर सकते हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है,
ठीक है, सही है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो है बाकी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। पैसे जो है बच्चों को ना दें स्कूल जाते हुए,
देखिए एक एज होती है, आप बच्चे को एजुकेट करें,
सही है,
ठीक है, आप बच्चे को एजुकेट करें, एक इससे पहले आप बच्चे को ट्रेन करें, ठीक है, कि उसने क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना, बच्चे रोबोट की तरह होते हैं, जो आप जैसे आप उनको सिखाएंगे वो वैसा करेंगे, आप बताएं कि ये कलर्ड फूड है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे कभी भी नहीं लेंगे,
ठीक है,
बल्कि वो दूसरे बच्चों को भी बताएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, अभी चलेंगे हम हसन के पास, हसन भी कुछ जो है मजेदार किस्म की चीजें हमारे लिए लेके आए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, ये जो आपने अभी कहा कि पैसा देने का, मुझे एक बचपन का अपने वाकया याद आ गया, कभी टाइम मिला तो बताएंगे आपको। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गलत चीजें फैल जाती हैं और हम लोग यकीन करके बैठ भी जाते हैं, और फिर जो है अगर आप कोई उसके खिलाफ कुछ कह दे तो ये होता है कि नहीं, यकीनन ये गलत कह रहा है, मैं तो सही कह ही रहा हूँ। इसमें होता ही है कि उनमें से सबसे एक अहम चीज़ है आजकल जो चल रही है वो ये है कि ट्यूब्स पर मुख्तलिफ चीज़ों के, चाहे वो क्रीम हो चाहे टूथपेस्ट हो, मुख्तलिफ जो ट्यूब्स हैं उनके बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो जहाँ पर एक लाल कलर के दायरे से दिखाया गया है कि मुख्तलिफ रंग होते हैं, छोटे छोटे से मार्क्स होते हैं उसके ऊपर, और कहा जाता है कि जो चीज़ कही जाती है कि अगर ब्लू या ब्लैक लाइन हो उसके ऊपर तो 100% वो केमिकल चीज़ है, अगर उसके ऊपर लाल कलर की लाइन हो तो वो 100% 50% केमिकल है, और अगर ग्रीन लाइन हो तो वो जो है वो जो यानी मुख्तलिफ पौधों हैं उनसे तैयार की गई है। लेकिन अभी हमें पता चला है, नहीं मुझसे किसी ने परसों या नरसों आके कहा, हो सकता है आप लोगों से इससे पहले कहा हो या इसके बाद कहा भी जाए, या आपके पास मुख्तलिफ ईमेल्स बहुत ही मोतबर ज़राए से आपके पास पहुंचने लगे। जो चीज़ मैंने कल रात को देखी वो ये थी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें कि जो रंग इसका है वो यहीं पर आपको, माफ़ कीजिएगा, यहीं पर आपको इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, यानी जो प्रिंटिंग का रंग होता है वही इस्तेमाल होता है, और वो ज़्यादातर इस चीज़ के लिए होता है कि सारे पेस्ट या सारे ट्यूब्स जो हैं जब डिब्बे में रखे जाते हैं कारखाने में, वो एक ही लाइन में होने चाहिए, एक ही सीध में होने चाहिए ताकि आराम से रखे जा सकें। तो उसमें जो है मसला पेश आ सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो स्कैनर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके लिए बना होता है, और इसका कोई रब्त किसी मादे से नहीं है। बल्कि अगर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स में जाकर देखें तो अगर आप लिखें केमिकल तो उसमें आएगा कि हर चीज़ दुनिया में केमिकल है और कीमियाई मादे से तैयार हुई है, हत्ता हम लोग खुद। तो चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खाने पीने के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ आपको बताएंगे। खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो ऐसा लगता है खाना नहीं खाया है, और या मिसाल के तौर पर और गलत चीज़ की तरफ ही हम लोग जाते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। खाने के बाद जो है मुख्तलिफ किस्म की जलेबियाँ हों, खुसन तली हुई अगर चीज़ें हों मीठी, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। एक उनमें से एक चीज़ जो होती है वो है मुख्तलिफ किस्म के मोस, या जिन्हें कहा जाता है कि पाउडर बेस कस्टर्ड्स, ये सब जो होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इसमें बहुत भरपूर मकदार में स्टार्च या नशास्ता इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से ये होता है, एक तो मोटापे का अगर आप यानी उसकी तरफ से आप थोड़ा ख़तरे में हैं तो आप उसकी तरफ ना जाएं, और अगर आपको यानी मीठी चीज़ें पसंद हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस इख्तियार करें, क्योंकि ये वाकई नुकसानदेह हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि मिठास इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ख़ुद उसके अंदर काफ़ी हद तक शुगर होती है। उसमें अलबत्ता मुफीद चीज़ें भी हम नहीं कह सकते, 100% गैर मुफीद है, लेकिन जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं या मोटापे का शिकार हैं वो लोग इसकी तरफ कोशिश करें कि न जाएं, क्योंकि इसमें जेलाटीन होती है, जेलाटीन आपको मालूम है कि बहरहाल एक मुफीद चीज़ है, और जो है इसमें पाउडर में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि नशास्ता बहुत ही, माफ़ कीजिएगा, दूसरी चीज़ मैं जो बता रहा था वो इसके हवाले से था कि नशास्ता जो है आप जब पानी में आप डालिए, खाली नशास्ता भी डाली, देखिए कितनी तेज़ी से वो पानी जज्ब करेगा, तो इसमें भी वो काफ़ी हद तक सलाहियत भी होती है, या उसको आप नुकसान भी कह सकते हैं। तो उसमें आप मोटापे का बहुत जल्द शिकार हो सकते हैं अगर ये आप इस्तेमाल करें, तो मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, और जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि बच्चों को ज़्यादा ये चीज़ें ना खिलाएं। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन, आपकी पहली जो खबर थी वो बड़े मज़े की थी, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब वक्त बिल्कुल महदूद है, क्या प्रिवेंशन की आप बात करनी थी, मैनेजमेंट के लिहाज से आप आखिरी में कुछ कहना चाहें तो?
बिल्कुल खुर्रम साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जिम्मेदारी घर से शुरू होती है। पहली बात, बच्चे की पैदाइश के बाद माओं को चाहिए कि बच्चे को अपना दूध पिलाएं। दूसरी बात, जब बच्चे स्कूल जाने लगें बच्चों को नाश्ता करा के भेजें, ठीक है, और उनको अगर एक ख़ास एज से पहले, जब तक उन्हें सही खाने की पहचान नहीं हो जाती, उन्हें पैसे ना दें,
ठीक है, सही।
अगली जिम्मेदारी फिर स्कूल की आ जाती है। स्कूल के इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कैंटीन चेक करें क्या वहाँ बिक रहा है, बच्चों की सेहत के लिए उसके क्या असरात हैं, और उस पर जो है वो तवज्जो दें और वक्तन फ़क्तन उसको चेक करते। आखिरी जिम्मेदारी फिर हुकूमत की आती है, कि क्योंकि हुकूमत लाइसेंस इशू करती है, जिसको लाइसेंस रेगुलेशन कहा जाता है, जो मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो फास्ट फूड्स को और खाने पीने की जगहों को बिल्कुल उनको चेक करती है, इंस्पेक्शन के बाद वो इशू करती है। तो हुकूमत को चाहिए कि उसमें स्ट्रिक्ट जरा पॉलिसी इख्तियार करें,
बिल्कुल,
और ऐसा जो कि सेहत के लिए मुझे है उसको ना फरोख्त होने दे और ना बनने दे।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपने जो है बहुत अहम नुकात की तरफ इशारा किया, और मेरे ख्याल में जो है इस आपकी बातों से ये ज़रूर है कि हमारी जो ख़वातीन या हमारे घरों में जो लोग बैठ के देख रहे हैं वो सोचेंगे ज़रूर इस बात पे कि इन चीज़ों के क्या नुकसान है। जहाँ तक बात आ जाती है हमारी हुकूमत की और जहाँ तक बात आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उनको चाहिए जैसे कि यहाँ पर ईरान में जो है हर रेस्टोरेंट में जो कुक होता है उसको एक अलहदा सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफिकेट से पहले उसके सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, उसको चेक किया जाता है कि उसमें हेपेटाइटिस नहीं है, उसमें ऐसी डिजीज़ नहीं है जो ट्रांसफ़र कर सके वो छींक के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए, जो भी अपने उसके फ्लूड्स हैं उसके ज़रिए, और जो बंदा वहाँ पर काम कर रहा होता है, जो सफाई कर रहा होता है, उसका अलहदा جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ ملا جاتا ہے. تو اس چیز ان چیزوں کا تھوڑا سا جو ہے اگر خیال رکھا جائے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. بہرحال وقت ہوا ہے کہ ہم حسن کے پاس چلیں. جی حسن.
خرم بھائی, اس میں یہ چیز ہے کہ بہرحال جب سرٹیفکیٹ بک رہے تو آدمی جا کے
بالکل افسوس کے ساتھ جو ہے یہ مسائل جو ہیں واقع ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ان مشکلات پہ بھی کسی کو بلا کے اس سے بات کریں ہم
انشاءاللہ. تو ناظرین چلتے ہیں, آج کا پیغام آپ لوگ دیکھیے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں, اور ہمارا رابطہ ہو گیا ہے دہلی اسٹوڈیو سے, اور چلتے ہیں وہاں.
ڈاکٹر عطیہ نشاط ہمارے ساتھ لائن پہ ایس این جی کے ذریعے موجود ہیں, اور میں سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام
ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ایک بار پھر جو ہے آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا, اور آپ کی باتوں کے بغیر جو ہے ہمارا پروگرام تقریباً ادھورا ہوتا ہے.
جی شکریہ.
ڈاکٹر صاحب کس موضوع پہ آج بات کریں؟
میرے خیال میں ہم اینٹی آکسیڈنٹس کے بارے میں ضرور بات کریں. اتنے دنوں سے میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں, اس میں ڈاکٹر عثمان خالق صاحب سے بھی شاید یہ موضوع چھوٹ گیا ہے, اور یہ مجھے بڑا ہی مزیدار موضوع اس لیے لگتا ہے کیونکہ اکثر مجھ سے پیشنٹس کہتے ہیں کہ کچھ مجھے اینٹی آکسیڈنٹس لکھ دیجیے کھانے میں. تو یہ مجھے سن کے بڑا عجیب لگتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ ٹی وی میں ایڈ میں بھی وہ شامل ہوتا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور, اور یہ چائے پیجیے اور یہ شربت پیجیے, لیکن لوگوں کو بالکل بیسک اس کی جانکاری نہیں ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس اصل میں ہوتا کیا. دیکھیے یہ تھوڑا طویل ٹاپک ہے. اینٹی آکسیڈنٹس ویسے تو پھل ہیں, سبزی ہیں, گرین ٹی, ہری چائے, اس میں بھی موجود ہوتے ہیں. جو کچھ وائٹمنز ہوتے ہیں جیسے وائٹمن سی, وائٹمن اے, وائٹمن ای, یہ خود اپنے آپ میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور جو پھل اور سبزی سے اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں وہ ہے فلیونوئڈس, انہیں بولتے ہیں ہم. اب تک 5000 سے زیادہ فلیونوئڈس ڈھونڈے جا چکے ہیں مختلف پھل اور سبزیوں میں. اور ایک جو یہ بڑی کیٹیگری, اور جو چھوٹی کیٹیگری چھوٹے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ ہے پولیفینولس, جنہیں بہت سے سائنٹسٹ یا ریسرچ پیپرز میں فائٹو کیمیکلس بھی لکھتے ہیں اپنے ریسرچ پیپرز میں, لیکن وہ ہوتے پولیفینولس ہی ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے اتنے ضروری کیوں ہو گئے ہیں اچانک ایک دم سے؟ آج سے 20 سال پہلے, 50 سال پہلے تو اینٹی آکسیڈنٹس کا نہ کوئی ذکر تھا, نہ ہی لوگ اس پہ اتنا اسٹریس دیتے تھے, نہ اتنا زور دیتے تھے. تو اصل وجہ اینٹی آکسیڈنٹس کے پیچھے یہ ہے کہ آج کل ہمارے ماحول میں, ہمارے غذا میں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں, جو کچھ بھی ہم جس طریقے کی سانس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں, جو کہ ماحول ہے, اس میں ہمارے اوپر ایک چیز ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں آکسیڈیٹیو سٹریس, یعنی ہمارے جسم پہ ایک قسم کا سٹریس بن گیا ہے. اب یہ آکسیڈیٹیو سٹریس کیا ہے کہ ہم جیسے آپ نے سیب کاٹا, سیب کاٹنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ براؤن ہو گیا, بھورے رنگ کا ہو گیا, تو وہ بھی ایک طریقے کا آکسیڈیشن ہے, یعنی ہوا میں جو موجود آکسیجن ہے وہ اس کی سطح سے ریئیکٹ کر رہی ہے اور اس کا رنگ بدل رہی ہے. ویسے ہی اگر آپ کا ہاتھ کہیں کٹ جاتا ہے تو وہاں ہلکی سی لالی ہو جاتی ہے, سرخی اور سوجن, اسے انفلمیشن کہتے ہیں, اور کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ بھورے رنگ کی پپڑی جس کو بولتے ہیں وہ جم گئی, وہ بھی آکسیڈیشن ہے. یہ بہت ہی نیچرل پروسیس ہے آکسیڈیشن, اور اس کے بغیر ہم شاید زندہ ہی نہیں رہیں گے. آکسیڈیشن بہت ضروری ہے, اس سے ہماری پرانی سیلز مرتی ہیں اور نئی سیل پیدا ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس میں 1 یا 2% جو سیل ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے آکسیڈائز نہیں ہو پاتی ہیں, اور وہ فری ریڈیکل بنا دیتی ہیں. فری ریڈیکل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو مولیکیول ہے, خاص مولیکیول, وہ اس میں سے مسنگ ہوتا ہے, غائب ہوتا ہے, اور وہ فری ہوتے ہیں جس میں, ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اب چونکہ وہ فری ہیں, فارغ ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے, تو وہ زبردستی جا کے دوسری سیل میں چھیڑخانی کرتے ہیں. اب جب اس میں چھیڑخانی کرتے ہیں تو جو ان کے فیٹی ایسڈس ہوتے ہیں دوسری سیل کے, وہ بھی کھل جاتے ہیں, وہ کھل جائیں گے تو وہ پھر فری ریڈیکلز بنائیں گے, اور اس طریقے کا ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جسم میں. اننیسیسری, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور وہ کام شروع ہو گیا. اس سے دو پریشانی ہوتی ہے, ایک تو کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, یعنی جو سیل بیچاری ایک دم آرام سے کام کر رہی تھی اس کو چھیڑخانی کر دیا, اور اتنی چھیڑخانی کی کہ اس کے ڈی این اے تک میں آپ نے چینج کر دیا. یعنی جو ڈی این اے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ڈیسائڈ کرتی ہے کہ سیل کیسے چینج ہوگی, کیسے بڑھے گی, تو اس میں چینج کر دیا. اب آپ سے کو اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے, کیونکہ کینسر ہوتا ہی یہی ہے کہ سیل کی انکنٹرول گروتھ. दूसरी परेशानी होती है फ्री रेडिकल से कि वो अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं छेड़खानी करके तो वो मारने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज, यानी डीजेनरेशन, जो भी सेल्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया। अगर जहन यानी दिमाग के सेल को डीजेनरेट करेंगे तो पार्किंसंस डिजीज होने का खतरा होता है, अल्जाइमर्स डिजीज होने का खतरा होता है, और अगर कहीं और जैसे फेफड़े में करा तो वो कैंसर होने का खतरा होता है, दिल के जाके दिल के टिश्यूज में गड़बड़ी करी तो हमको दिल की बीमारी होने का खतरा होता है। तो ये फ्री रेडिकल्स ही हमारी परेशानी की जड़ है। अब सवाल ये कि फ्री रेडिकल्स एकदम से बढ़ क्यों गए हैं? बढ़ इसलिए गए हैं क्योंकि जो हम हवा में जिस किस्म की सांस लेते हैं, जिस किस्म का खाना खाते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो मैंने पहले कहा ना कि जो नॉर्मल 1-2% पहले फ्री रेडिकल्स थे, अब वो बढ़ के 10-12% हो गए। अब जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं वो उतनी ज़्यादा आराम से जो सेल बेचारी अपना काम कर रही थी उसमें जाके छेड़खानी कर रहे हैं, उनको या तो कैंसर हो रहा है या फिर डीजेनरेटिव डिजीज हो रही है। तो अब ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये इन फ्री रेडिकल्स को खाते हैं, स्कैवेंज करते हैं, यानी ये जो फ्री हैं ये फ्री इसलिए होते हैं कि इनका मॉलिक्यूल मिसिंग है, ये दूसरे से बेचारे जाके अटैच होने की कोशिश करते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होते नहीं है बल्कि उनको भी अनस्टेबल, उनको भी फ्री करते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स को रोकना है ये काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं,
ठीक है।
तो अब आप समझिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करना, और ये प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ये लिखा नहीं जा सकता कि आप ये एंटीऑक्सीडेंट्स खा लीजिए, ये हमारे खाने में आम खाने में मौजूद होता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल जो होता है कैंसर से बचाव के लिए जो है कहा जाता है कि कैंसर, अगर आप चाहते हैं कैंसर ना हो तो एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करें, तो लाइफस्टाइल जो है वो भी एक बहुत अहम रोल है उसका कि आप कैंसर मुख्तलिफ किस्म के कैंसरों से बचे रहें। तो मेरे कहने का सवाल मेरा ये है कि क्या लाइफ बेहतर नहीं है कि हम मसलन जो तली हुई चीज़ें जिनको हम जला देते हैं, या जैसे आपने कहा ग्रिल हुई हुई चीज़ें जो हैं आग पे जिनको हम कोयलों पे जिनको जला देते हैं, तो ये सारी चीज़ों कैंसरस हैं, इनसे बचा जाए बजाय इसके कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को मांगते फिरें।
देखिए ये दोनों ही, ये बात आपकी बहुत ख़ास है, ये जैसे अभी पहले भी डॉक्टर साहब कह रही थी प्रिवेंशन, जो आपने बात की वो प्रिवेंशन है की है और वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जाहिर सी बात है अगर हम ऐसी चीज़ों से बचेंगे जिससे फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं, जिसमें जैसे अब हम सिगरेट पीते हैं तो जाहिर सी बात है उससे हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो सिगरेट ही पीना क्यों ना छोड़ दें। या हम बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ खा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा फ्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, या हम तेल को रीहीट करके खा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया उससे ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है, वो और खतरनाक, उससे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो अगर इन चीज़ों से दूर रहें तो जाहिर सी बात है हमारे जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा और हमें फ्री रेडिकल्स की भी ज़रूरत कम होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात ही बता दूँ कि अब जिस किस्म का खाना हम खाते हैं, मान लीजिए हम सेब भी खा रहे हैं, तो सेब में उगाया गया है वो फर्टिलाइजर और डाल के केमिकल डाल के, फिर उसको कीड़ा ना लगे तो उसमें पेस्टिसाइड डाला गया, इंसेक्टिसाइड डाला गया, फिर वो सड़े नहीं तो ऊपर से उसमें आजकल पैराफिन लगाते हैं, वैक्स से खूब चमकाते हैं ताकि उससे एनवायरनमेंट से उसका कांटेक्ट कम हो, वो चमकदार भी दिखे और सड़े भी नहीं। तो इस कदर वो एक तरीके का प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, हर चीज़ चाहे वो फल सब्जी क्यों ना, तो इससे लाइफस्टाइल अगर हम बहुत अच्छी कर भी लें, यानी जैसे दिन में हम फल सब कुछ खा भी रहे, फिर भी हमारा कुछ निज़ामी ऐसा है, हमारे पूरा माहौल ऐसा हो चुका है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना ही बढ़ना है, और इसके लिए फ्री रेडिकल्स का होना मतलब है ही वो हमारे माहौल में, और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है ही। और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सुपर फूड है, जैसे हम ब्रोकली खाएंगे तब हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, या ग्रीन एप्पल जाके हम सुपर मॉल से लाएंगे, या कीवी फ्रूट की ये सब खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री रेडिकल्स सॉरी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स टमाटर से मिल सकता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी आपकी ग्रीन चाय जो हरी चाय होती है उससे मिलता है, और जो अलग अलग फल और सब्जियां होते हैं उसमें अलग अलग किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे अब हमने एक वो खा लिया, मान लीजिए संतरा या नींबू, तो उससे विटामिन सी मिला। जो विटामिन सी है उसका काम ये है कि जो चेन रिएक्शन है, जो मैंने कहा कि दूसरे को जाके छेड़खानी करते हैं, उसी को रोक देता है वहीं पे। लेकिन मान लीजिए चेन रिएक्शन शुरू हो गया तो उसको रोकने के लिए विटामिन ई है। विटामिन ई बहुत आसानी से हमें मछलियों से मिलता है, हम हफ्ते में खुद 1-2 बार मछली खाते हैं, तो विटामिन ई। इस किस्म से देखें तो हमें हर तरह एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते ही रहते हैं, बस सवाल ये कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको खाते कैसे। अब ग्रीन टी हम पीते हैं, हैं। ग्रीन टी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे कहते हैं कैटेकिन। कैटेकिन से आपकी स्किन अच्छी होती है, आपका वजन कम होता है, और आपके जिस्म में अगर वाटर रिटेंशन जिसको कहते हैं फाजल पानी इकट्ठा हो गया है, मॉइस्चर जिसको कहते हैं जिससे फूलता है बदन, ईडिमा की प्रॉब्लम होती है, वो दूर होता है। टमाटर जैसे मैंने कहा उसमें लाइकोपीन होता है एंटीऑक्सीडेंट, एक फ्लेवोनॉइड्स होता है उसका नाम है लाइकोपीन, वो तो इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप उसको रोज़ अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें तो वो एंटी टैन का काम करता है, यानी सन बर्न अगर आपका हो गया तो वो दूर करता है, वो एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट है। और रिंकल को दूर करता है, क्योंकि ये जो हमें जो फ्री रेडिकल्स की एक जो परेशानी है वो एजिंग भी है, प्री मेच्योर एजिंग, यानी आप हैं तो 30 के लेकिन दिखते 35 40 50 के, वो इसीलिए होता है कि आप जो सूरज है जो हवा है वो आपके चेहरे की स्किन या हाथ की जो भी एक्सपोज्ड एरिया है, खुला हुआ एरिया है, उसमें जाके फ्री रेडिकल्स बनाता है और स्किन में वेयर और टियर यानी खराबी ज्यादा पैदा करते हैं। और
अच्छा नाजरीन, लगता है कुछ रबते में हम लोग की प्रॉब्लम हो गई। बहरहाल मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अतिया निषाद का, दिल्ली से हर दफ़ा हम लोग उनको ज़हमत देते हैं और बहुत अब मुफीद उनकी बातें होती हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर रब्ता बरकरार हो गया है और हम लोग की आवाज़ सुन रही हैं तो मैं आप हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, असन बड़ी एक चीज़ मैं बताते चलूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया कि सेब के साथ जो सलूक किया जाता है आजकल, तो वो कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर में भी इतनी चीज़ें नहीं लगाई जाती जितनी सेब को बेचारे को दी जाती है, जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल। और ये चीज़ें हैं कि वो जो है रेड रहे, उसकी जो वो जिल्द है वो खराब, क्योंकि जारी बात है हम लोग भी तो यही चीज़ें देखते
हैं इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल वो उसमें हज़ार मसाइल पेश आ जाते हैं। बहरहाल डॉक्टर अतिया निषाद साहिबा शायद हमारी वो देख रही हैं, तस्वीर देख रही हैं,
तो हमारा जो है रब्ता हो गया। तो डॉक्टर साहब से जो है हम डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, और जो है इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी जो है हम अपनी इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट का मौजू जो आपने उठाया है बहुत ही अहम मौजू है,
इंशाल्लाह इस पे हम लोग
बिल्कुल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
जी शुक्रिया।
अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि अपने एजाज हुसैन साहब ने हम लोग के लिए पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है कि हम लोग नज़रअंदाज करते हैं बाज़ आपके पैगाम, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोग अगर नहीं पढ़ते तो वक्त की किल्लत के बिना पर होता है हम लोग पास वक्त, आप जैसा कि देख रहे हैं कितना हम लोगों ने यानी कई सेकंड्स के एतबार से हम लोग वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर
नाम जरूर
नाम हम लोग पढ़ते हैं, फैसल मुर्तजवी बलोच साहब का पैगाम आया था, उन्होंने तारीफ की थी एनिमेशन की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी एक बहन ने एक पैगाम भेजा था क्योंकि लंबा था हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, तो ये चीज नहीं है कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं बल्कि हम लोग उस पर अमल करते हैं जरूर, अगर यहाँ
पढ़ लेते हैं शायद प्रोग्राम के बाद पढ़ लेते हैं और उस पर असर जरूर होता है हमारे पे। दूसरी बात यह है कि एजाज साहब और अली नादिर साहब आप लोग तो हमारे जो है वो हमेशा के व्यूअर हैं, तो आप लोग जो है इस तरह का हमारे से गिला ना किया करें, आप लोग हमेशा होते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में,
बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हो मौजूद हूँ, उनसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये तो आज का प्रोग्राम था सनीचर के,
हमारा जो इंशाल्लाह हफ्ते के दिन जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छे से जो है अपने मेहमान को बुलाएं, जो है अच्छी सी बातें आपके साथ करें और लाइफस्टाइल के बारे में आपसे इंशाल्लाह बात
करेंगे।
बिल्कुल,
कल आप जो है मंगल का प्रोग्राम फिर से देख सकते हैं जुमे को,